हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अबीर सिंह राठौड़ ने जोया को कपड़ों समेत बाथटब में लिटा दिया था। अबीर ने हल्का गर्म पानी करके उसमें कुछ केमिकल्स डाले थे, जिससे जोया के शरीर में जो भी दर्द था उसे आराम मिल सके। अबीर जानता था कि जोया ने कभी इतनी एक्सरसाइज नहीं की होगी। पहली बार जिम में एक्सरसाइज करने पर हाथों और जोड़ों में दर्द होना स्वाभाविक है। इसी बात का ध्यान रखते हुए अबीर ने जोया के बाथटब में हल्का गर्म पानी करके उसमें कुछ केमिकल्स डाल दिए थे। ये केमिकल्स जोया को दर्द में काफ़ी आराम दे रहे थे। जोया को उस बाथटब में नहाकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा था और जल्दी ही वो नहाकर कमरे से बाहर आ गई। फ्रेश फ्रेश जोया बहुत खूबसूरत लग रही थी। अबीर सिंह राठौड़ आराम से सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। जैसे ही उसकी नज़र जोया पर पड़ी, वो उसे देखने लगा। अबीर को जोया को देखना बहुत पसंद था। उसे ऐसा लगता था कि दुनिया में अगर कहीं खूबसूरती है तो वो सिर्फ यही है, यही है, यही है। बाथरूम से बाहर निकलकर जोया सीधा अबीर के पास आई और बोली, आखिर आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप मुझे ऐसे कैसे वहाँ पर उस टब में डाल सकते हैं? आपको पता था ना मैं सो रही थी। आपको पता है मैं कितनी थक गई थी। आज तो आपने मुझे उन औरतों के पास भेजा जो औरतें भी नहीं हैं। पता नहीं उनमें इतनी ताकत कहाँ से आई। आपको पता है वो ऐसे ही एक लोहे की रॉड पकड़कर ऐसे मोड़ देती हैं। उनमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, मैं आपको क्या बताऊं? जोया बच्चों की तरह अपनी लेडीज कोच की बुराई और अच्छाई अबीर को बताने लगी। जोया की बातें सुनकर अबीर को बहुत मज़ा आ रहा था। जोया बिल्कुल बच्चों की तरह थी, जैसे कोई बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है और अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। इसी तरह जोया एक एक बात बड़ी बारीकी से बता रही थी और अबीर भी उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जोया की बातें सुनना सभी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कितनी देर जोया की बातें सुनने के बाद अबीर ने उसे कहा, तुमने खाना नहीं खाया है, तुम खाना खा लो और उसके बाद आराम कर लो, कल सुबह फिर से तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। जैसे ही जोया ने ये सुना, वो हैरानी से अबीर की ओर देखने लगी और बोली, अभी तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मेरी ट्रेनिंग होगी। मैं नहीं कर सकती ये ट्रेनिंग। आपको पता है ना मुझे कितना दर्द हुआ था, कितनी तकलीफ हो रही थी, जोया ने अबीर से शिकायत करते हुए कहा। तभी अबीर उठा और अचानक जोया के पास बैठ गया। उसने उसके गालों को छूकर कहा, ये तकलीफ कुछ भी नहीं है जो तुम अभी फेस कर रही हो। ये इससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम अपनी जिंदगी में ऑलरेडी फेस कर चुकी हो। अब तुम्हें तकलीफों से भागने का नहीं, तकलीफों का सामना करने का टाइम आ गया है। बहुत जल्द, जैसे ही तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में ओनर नियुक्त करूंगा और उसके बाद तुम्हें अपने दुश्मनों को किस तरह नाचना है, किस तरह उन्हें हराना है, किस तरह उन्हें सजा देनी है, किस तरह उन्हें मारना है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर छोड़ूंगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। उन लोगों को मारना, तड़पाना, उन्हें बर्बाद करना, उनकी जान ले लेना, इन सब पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ तुम्हारा है और मैं तुम्हारा वो हक किसी भी कीमत पर नहीं छीनूंगा। और अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने तुम्हारे दुश्मनों को बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं उन्हें भी बर्बाद कर डालूंगा, लेकिन अपने दुश्मनों को सजा तुम ही दोगी, वो भी अपने हाथों से। अबीर ने एक एक शब्द चबा चबा कर जोया से कहा। जोया अबीर के चेहरे की ओर देख रही थी क्योंकि उसकी आंखों में जुनून, मोहब्बत, नफरत सब कुछ था जो सिर्फ जोया के लिए था। जोया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में अबीर सिंह राठौड़ जैसा कोई आ सकता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। अचानक जैसे ही जोया ने अबीर को अपने इतने करीब पाया, उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। ये पहली बार था जब जोया ने अपने आप से किसी को किस किया था, वो भी अबीर सिंह राठौड़ को जो उसका पति था। अबीर जोया के इस रिएक्शन के लिए रेडी नहीं था। जैसे ही जोया के होंठों ने उसके होंठों को छुआ, अबीर के अंदर एक तरह की कमकपी सी होने लगी, लेकिन जोया अबीर को पैशनेटली किस कर रही थी। अचानक जोया को अपने इतने करीब पाकर अबीर भी अपने होश में आने लगा और बदले में वो भी जोया का साथ देने लगा। जल्दी ही वे दोनों एक दूसरे को जी भरकर प्यार करने लगे और फिर वे दोनों बिस्तर में एक साथ थे। जैसे जैसे उन दोनों का प्यार बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनके कमरे का तापमान भी बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों दोनों एक हो पाते, तभी अबीर सिंह राठौड़ का फोन बजने लगा। जैसे ही अबीर का फोन बजने लगा, अबीर और जोया ने एक दूसरे को देखा। जोया ने शर्म के मारे अपनी आंखें झुका ली थीं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे पर लिपटे हुए थे और जी भर कर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। शायद ये जोया और अबीर का एक दूसरे को प्यार जताने का अंदाज था जो आज कहीं न कहीं पूरा होने वाला था। लेकिन अचानक फोन आने पर अबीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये किसी और का नहीं बल्कि अकरम का फोन था, तो अबीर के लिए ये कॉल काफी जरूरी थी। इसीलिए अबीर कॉल अटेंड करने के लिए अपनी शर्ट पहनते हुए बालकनी में चला गया और जोया हल्का हल्का शर्माती हुई अपने कपड़े पहनने लगी, क्योंकि आज वे दोनों इतने करीब हो गए थे, बहुत ज्यादा करीब, पर वे दोनों पूरी तरह से एक नहीं हो पाए थे। जोया के गाल शर्म से लाल होने लगे थे और वो भाग कर अपने दूसरे कमरे में आ गई और एक बार फिर नहाने लगी। नहाने के बाद जोया ने खुद को फ्रेश किया और फिर एक तरफ बैठकर कुछ सोचने लगी। जोया ने सोचा, क्यों ना थोड़ा सा वक्त अपनी बेटी के साथ बिताया जाए। इसीलिए वो नीचे स्पेशल केयर बोर्ड में चली गई और अपने बच्चों को शीशे से देखने लगी। जोया का दिल बहुत अजीब सा हो रहा था, क्योंकि एक तो जोया ही अबीर के साथ प्यार करने की पहल की थी और अचानक फोन आ जाने पर उन दोनों का प्यार आज पूरा होते होते रह गया था। जोया काफी शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी है, लेकिन अब जो भी था वो हो चुका था, तो अब डरने या शर्माने का कोई फायदा नहीं था। वहीं अकरम ने अबीर को फोन करके बताया कि गजाला जी और अरहम ठाकुर अब उसी के घर में रहते हैं, सिर्फ जोया की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। जैसे ही अबीर ने ये सुना, वो बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि वह जोया के आसपास किसी भी तरह का कोई खतरा या नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अबीर ने नहीं सोचा था कि गजाला जी अपने बेटे को लेकर उसके घर में रहने आ जाएगी, वो भी उसकी बीवी की जासूसी करने के लिए। तभी अबीर ने सोचा, क्यों ना इस अरहम ठाकुर और अपनी सौतेली माँ को कोई सबक सिखाया जाए। ये सोचकर अबीर ने वापस अपने घर जाने का डिसीजन ले लिया था और उसी दिन उसने वापस आने का भी डिसीजन ले लिया था, क्योंकि वह जोया के बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकता था। अकरम से बात करने के बाद जैसे ही अबीर ने अपने कमरे की ओर देखा, तो उसे पता चला कि जोया वहाँ नहीं थी। अबीर समझ गया था कि जोया कहाँ होगी, इसीलिए अबीर भी नहाकर कपड़े पहनकर स्पेशल केयर बोर्ड की ओर चला गया। उसने देखा जोया वहाँ खड़ी हुई अपनी बेटी की ओर देख रही थी। अबीर ठीक उसके बराबर में जाकर अपने हाथों में हाथ रखकर खड़ा हो गया। जैसे ही जोया ने अबीर को देखा और अबीर ने जोया को देखा, उन दोनों ने अपनी नजरें झुका ली थीं। उन दोनों को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई बुरा काम कर दिया हो, जबकि वो उन दोनों मियाँ बीवी के बीच का प्यार था और कुछ नहीं। तभी अबीर ने जोया से कहा, मुझे किसी जरूरी काम से कुछ घंटे के लिए जाना होगा, तब तक तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है और याद रहे तुम्हें अपनी क्लास मिस नहीं करनी है।
जैसे ही जोया ने ये सुना कि अबीर कहीं जाने वाला है, जोया तड़प गई और वो तुरंत अबीर के गले लग गई और बोली, नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। जैसे ही अबीर ने जोया के चेहरे की ओर देखा, तो वहाँ पर आंसुओं की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। जोया की आंखों में आंसुओं को देखकर अबीर का दिल टूटने लगा और वो बोला, मैं इस जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी की आंखों में एक भी आंसू किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और रही बात मेरे जाने की, तो मेरा जाना जरूरी है और मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना खुद एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहकर अबीर ने भी जोया को कसकर हग कर लिया और जोया से विदा लेकर अपने प्राइवेट जेट से वापस अपने घर राठौर मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। वहीं होटल से निकलते वक्त राजवीर ने जैसे ही चांदनी को देखा, तो उसे देखकर वो लाल पीला होने लगा। उसे चांदनी आज भी याद थी। चांदनी का खूबसूरत जिस्म उसे चैन से सोने नहीं देता था। जैसे ही उसने चांदनी को देखा, वो उसकी ओर बढ़ने लगा और इससे पहले कि वो चांदनी के पास जाता, तुरंत ही उनके बीच में राजा आकर खड़ा हो गया। राजा ने राजवीर को चांदनी को देखते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही राजवीर ने राजा को देखा, तो हैरानी से उसने उससे पूछा, राजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने दिनों बाद तुम मुझे कहीं मिले क्यों नहीं? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? राजवीर ने अपनी झूठी चिंता करते हुए राजा से कहा। राजा उसके बात के मतलब समझ गया और बोला, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है राजवीर सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इससे पहले कि आप मिल ही चुके हैं, ये मेरी बीवी है चांदनी। जैसे ही राजवीर ने ये सुना कि राजा ने चांदनी से शादी कर ली है तो उसे काफी गुस्सा आने लगा। उसने तो सोचा था कि आज रात चांदनी को समझा बुझाकर अपने साथ ले जाएगा और अपनी रात को रंगीन करेगा। लेकिन जैसे ही राजा ने चांदनी को अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस कराया, राजवीर के अंदर कुछ तप सा गया।